Acest oameni, lămostul, lămostul, lămostul. सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुदी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।
जय। बोले का परम पूज्य स्वामी मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की जय।
हम सभी लोग इस बात पे विचार कर रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाए। श्रद्धा और भक्ति से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, इस बात को हमने पिछले दिनों समझा है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, इस बात को भी हमने पिछले दिनों समझा है। और जब हम सत्कर्म करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। और इसी चीज को अपन ने कल से समझना शुरू किया है। जिसके जीवन में श्रद्धा भक्ति है, सच्चा ज्ञान है और जिसका आचरण सदाचरण है या जिसके कर्म निस्वार्थ कर्म है, वही व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सके। सच्ची श्रद्धा या भक्ति कैसे प्राप्त होती है? हमारे अपने आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। और सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? सच्चा ज्ञान वह हमारे अपने आत्म ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जब तक हमें अपने आत्मा का स्वभाव मालूम नहीं होगा, तब तक हमारा ज्ञान सच्चा नहीं कहलाएगा। दुनिया में बहुत लोग बहुत प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना संसार चलाने वाला ज्ञान है, वो वास्तव में अविद्या है। विद्या तो वही है जिससे कि अपने आत्मा का कल्याण होता है। और कर्म वे ही सही माने जाते हैं जो कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से किए जाते हैं, अपना कर्तव्य मान करके किए जाते हैं और स्वपर के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के किए जाते हैं, तब जीवन अच्छा बनता है। हम ये सोचें कि अकेले श्रद्धा भक्ति से हमारा जीवन सच्चा बन जाएगा, अकेले ज्ञान से हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, अकेले कर्म करने से बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जहां हम श्रद्धा भक्ति की बात करते हैं वहां भी ज्ञान और कर्म है। जहां हम ज्ञान की बात करते हैं वहां भी श्रद्धा और कर्म है। जहां हम कर्म की बात करते हैं वहां भी श्रद्धा भक्ति और ज्ञान से समन्वित कर्म ही है। इसलिए किसी एक के कहने पर एक ही नहीं मान लेना, किसी एक के कहने पर तीनों ही आ जाते हैं। यह बात ध्यान में रखने की है। किसी को ऊंचाई पर जाना हो तो भैया क्या बनाते हैं अपन? सीढ़ी बनाते हैं। सीढ़ी में कितनी जरूरत है? दो लंबी लकड़ियां जरूरी हैं और फिर छोटी छोटी लकड़ियां भी जरूरी हैं उसमें चढ़ने के लिए। बताइए, वो दो खड़ी लकड़ियां हैं वही तो श्रद्धा भक्ति और ज्ञान की प्रतीक हैं, और वो जो स्टेप लगाए हैं, वो जो एक 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 लकड़ी लगाई है, वो हमारे आचरण और हमारे निष्काम कर्म की प्रतीक है। तभी हम सीढ़ी से और ऊंचाई, ये इन्हीं से निर्मित है जीवन को ऊंचा बनाने की सीढ़ी भी इन्हीं श्रद्धा भक्ति ज्ञान और कर्म से निर्मित है हमारे ऊंचाई देने वाली सीढ़ी। ऐसा मान करके और अपन को अब अपने कर्मों को अशुभ कर्मों से बच करके शुभ की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। मन वचन काय की सभी जितनी प्रवृत्तियां हैं वो ही कर्म कहलाती हैं। काय वांग मना कर्म योगा, मन वचन काय की जो भी क्रिया है उसी के द्वारा भला जीवन बनता है। उसी के द्वारा जीवन हम चाहें तो अपने हाथ से बिगाड़ भी सकते हैं। मन से भी हम कर्म करते हैं, सोचने का कर्म करते हैं, वाणी से भी करते हैं, बोलने का कर्म करते हैं, शरीर से जो है और जो भी क्रियाएं हैं वो सब करते हैं, वो शरीर का कर्म है। इन तीनों को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति इन तीनों को व्यवस्थित कर लेता है उसे ही तो श्रावक कहते हैं। सामान्य रूप से गृहस्थ और साधु दोनों के लिए ठीक ठीक कर्म करने की सलाह दी गई है। दो ही के कर्तव्य निर्धारित किए हैं, क्योंकि देखने में कौन कौन आता है? गृहस्थ और साधक, कोई साधु होगा, दो ही देखने में आते हैं, और दोनों के लिए अपने अपने कर्तव्य बताए गए हैं जिससे कि वे अपने कर्म को करके और संसार से पार हो सके। तो श्रावक का अपना कर्तव्य है या गृहस्थ का अपना कर्तव्य है? गृहस्थ तो श्रावक में थोड़ा सा फर्क है भैया। अपने यहाँ पर चार प्रकार का संघ बताया गया, मुनियारी का, श्रावक और श्राविका। उसमें श्रावक और श्राविका भी आए हैं, और मुनि और आरी का तो साधक हैं, वो साधु हैं। मुनि कहो, ऋषि कहो, यति कहो, अनगार कहो, भैया भदंत कहो, जो कहना हो, पंडित कहो, वर्णी कहो, ये सब मुनि के ही पर्यायवाची शब्द हैं, साधु के ही शब्द हैं ये सब। और इधर जो है, अगर कोई माँ साधु बनती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आरिका बोलते हैं। और इधर जो है, अगर कोई पुरुष वर्ग में और व्रत नियम लेता है तो उसे श्रावक कहते हैं और श्राविका कहते हैं। और ये चारों मिलकर के ही अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। सामान्य गृहस्थ तो अपने खाने पीने इन सब चीजों में लगा हुआ रहता है। जब उसके भीतर श्रद्धा जागृत होती है, श्रद्धा का है, बा विवेक का है और का क्रिया का है, जब वो श्रद्धावान होता है, विवेकवान या कि ज्ञानवान होता है, जब वो सदाचरण करता है, क्रियावान होता है, तब वो श्रावक कहलाने लगता है। और कोई विशेष उसमें बात नहीं है। एक श्रावक या कि गृहस्थ का धर्म क्या है, इस पे अपन को थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। उसका आचरण, क्योंकि कल हमने ये समझा था कि जब हमें श्रद्धा और भक्ति से हमारे लिए रोशनी मिल गई है, हमारे जीवन का अंधेरा हट गया है, हमें अब अपने कल्याण का मार्ग सूझने लगा है, हमें इतना ज्ञान हो गया है, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने भीतर के जो राग द्वेष परिणाम हैं, जो कषाय भाव है, उसको कमती करने के लिए अब हमें अपने आचरण को सदाचरण की तरफ ले जाना चाहिए। अशुभ से बचा करके शुभ की तरफ ले जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो शुद्ध है, हम लक्ष्य तो वह शुद्ध प्राप्त करना चाहते, पर उस शुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शुभ का संकल्प करना पड़ेगा और अशुभ से मुझे बचना पड़ेगा। ये प्रयत्न आवश्यक है। इसलिए जब हम शुभ का संकल्प कर रहे हैं तो कौन सी बातें शुभ हैं जो हमारे लिए करने योग्य हैं, तो ऐसे जो शाबक के लिए करने योग्य हैं और साधु के करने योग्य हैं, दोनों की चर्चा की गई है। अपन पहले, क्योंकि मेजॉरिटी तो भैया आप ही लोगों की है, आप ही की बात करेंगे, हम साधु के कर्तव्य की क्या बात करें, वो तो बहुत माइनॉरिटी में है, थोड़े से दिखाई पड़ते हैं, भी अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। और एक शावक को क्या कर्तव्य करना चाहिए, इस पर अपन विचार करें। जब मैं आया था तब मैंने आपसे शुरू दिन ये बात कही थी, पता नहीं उसमें से सभी लोगों ने ठीक से याद रखी कि नहीं रखी, कि अगर हमारे जीवन में हमें अपने आचरण को अच्छा बनाना है तो हमारी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, और भावनाओं की पवित्रता के लिए चार बातें आवश्यक हैं। प्राणी मात्र से मैत्री भाव पहली आवश्यकता है। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री होना चाहिए, एक इंद्री क्षुद्र जीव से लेकर के और परमात्मा तक, सब जहां जहां जीवन है उन सब से मेरी मैत्री है। मैत्री के मायने क्या है? मैत्री के मायने मित्रता नहीं है, मित्रता और मैत्री में अंतर है। मित्रता में तो ऐसा है कि कोई शत्रु भी होगा, लेकिन मैत्री में कहीं कोई शत्रुता नहीं है, किसी को भी दुख ना हो, इस तरह की भावना का नाम मैत्री है। किसी को भी आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे मैं हूं वैसे ही सब हैं, इसलिए मेरी सबसे मैत्री है। किसी को भी दुख ना हो, कौन दुख चाहता, मैं स्वयं दुख चाहता हूं क्या? नहीं चाहता, तब तो फिर कोई भी नहीं चाहता। इसलिए मैं भावना भाता हूं कि किसी को भी दुख ना हो, यही मेरा मैत्री भाव है। इसके बिना धर्मात्मा नहीं हुआ जा सकता भैया। अपन लोग बाहर की क्रियाएं करके धर्मात्मा बने फिरते हैं, पर वास्तव में अंदर झांक करके देखें तो बाहर की क्रियाएं कर लेने वाला अकेला धर्मात्मा नहीं होता, उसके भीतर जो भावनात्मकता है, जो सद्भाव है, वो उसे धर्मात्मा बनाता है। इसलिए किसी को भी दुख ना पहुंचे ऐसी भावना रखने वाला ही और अपने जीवन को, अपने कर्म को पवित्र बना सकता है। और इतना ही नहीं, गुणीषु प्रमोदम, जो गुणवान है, हमसे अधिक जो ज्ञान रखते हैं या श्रद्धा रखते हैं या जिनका आचरण निर्मल है, हमसे अधिक गुणवान है, उनके प्रति प्रमोद भाव, हर्ष का भाव, उनको देख करके और मन गदगद हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए कि अरे वाह, आप इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं। अपने लिए तो आज ईर्ष्या हो जाती है, किसी को अपने से ज्यादा गुणवान देखते हैं तो उसके गुण सहन नहीं होते, सहन नहीं होते तो ईर्ष्या हो जाती है, और उसका तो जैसा हो सो हो, अपना अपने हाथ से अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए दूसरी आवश्यकता है अपने कर्मों को ठीक बनाने की, अपने जीवन को ठीक बनाने की, कि हम जहां एक गुण भी दिखाई पड़े वहां पर हम पर अपनी प्रशंसा, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करें। भैया प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, लेकिन बहुत प्रशंसा करने के लिए और प्रसन्नता अपने भीतर रखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती। दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति जहां हो वहां दूसरे के गुण कहां दिखाई पड़ते हैं, और गुण दिख जाएं तो प्रशंसा कर पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपने को ये भी अभ्यास तो करना पड़ेगा कि हमें गुणवान को देख करके प्रशंसा का भाव आना चाहिए, हर्ष का भाव, रोमांचित हो जाए कहते हैं। और कोई अगर दीनहीन और दुखी है, पुअर और नीडी पर्सन है, आवश्यकता है उससे किसी चीज की, या दुखी है तो कम से कम उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति करुणा और दया का भाव तो उमड़ना ही चाहिए, उमड़ना चाहिए कह रहा हूं, होना चाहिए भी कह सकता था, होना चाहिए मैं मजबूरी है, और उमड़ना चाहिए मैं बिल्कुल मेरा नेचर है, आ ही जाएंगे आंसू, आ ही जाएंगे कि इतना दुख, मैं इसका दुख कैसे दूर कर दूं, लेकिन कर नहीं पाऊंगा ये जानता हूं, पर दुख कैसे दूर कर दूं, ये भावना बहाने में क्या पैसे लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन ऐसी भावना अंतरंग में आना चाहिए। और फिर कहते हैं जो गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, दुर्जन हैं, क्रूर हैं, कुमार्गगामी हैं, उन पर भी क्षोभ ना आए मेरे अंदर, उन पर भी मैं साम्य भाव रखूं, न उनकी निंदा करूं न प्रशंसा करूं, बस भावना भावूं कि ये कब सच्चे मार्ग पर आ जावे, अब जल्दी से इनको भी सच्चा मार्ग मिल जावे। क्योंकि मैं पहले कह चुका कि मेरी मैत्री प्राणी मात्र से है, मैं किसी को भी यहां दुखी नहीं देखना चाहता हूं। ये बुरे मार्ग पर चलकर खुद दुखी हो रहा है, इसे सच्चा मार्ग मिले, इसका दुख दूर हो, ऐसी भावना भाना, ये चार बातें जीवन में पहले आवश्यक हैं। ये हमारा कर्तव्य है भैया। उसके बाद और भी कर्तव्य हैं, एक सदगृहस्थ कहिए या एक शावक के और भी कर्तव्य हमारे अपने। मैं तो सोचता हूं ना इसको सदगृहस्थ के कहना चाहिए ना शावक के कहना चाहिए, इसमें तो ना किसी धर्म विशेष के कहना चाहिए कि जैनियों के ही होना चाहिए कि वैष्णव के ही होना चाहिए कि इसके होना चाहिए। मैं तो सोचता हूं विनोबा जी कहते थे कि मैं जैन बाद में हूं, मैं ब्राह्मण बाद में हूं, मैं मनुष्य पहले हूं, मैं किसी की माँ बाद में हूं, मैं किसी का पिता बाद में हूं, मैं पहले मनुष्य हूं फिर बाद में किसी का पिता हूं, फिर किसी धर्म का कोई श्रावक हूं या कि साधु हूं, पहले मैं मनुष्य हूं। इसलिए मनुष्य का क्या धर्म है मुझे वह तो कम से कम निभाना ही चाहिए। मेरे कर्म को अगर मैं निर्मल बनाना चाह रहा हूं तो फिर मुझे मेरा कर्तव्य क्या है एक मनुष्य होने के नाते वो तो होना ही चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते ये कर्तव्य है कि मैं सबसे मैत्री रखूं, गुणवान के प्रति हर्ष भाव रखूं और दीन दुखी के प्रति कृपा और करुणा का भाव रखूं और जो दुर्जन हैं उनके प्रति भी और अपने मन में साम्य भाव ही रखूं। ये तो मेरे मन में भाव रहना ही चाहिए, इतना तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको अपन कहते हैं। एक मनुष्य होने के अगर मनुष्यता के नाते भी विचार करें तो इतनी बात तो होनी चाहिए। और कहते हैं कि हमें और क्या क्या कर लेना चाहिए, तो छह बातें आवश्यक हैं दिन भर में। कौन कौन सी? ईश वंदना जिसको कहते हैं, भक्ति जिनेंद्र भगवान की पूजन, देव पूजा, दूसरा चाहे जो नाम देना हो गुरु पास्ती, गुरुओं के निकट जाकर के बैठना, उनसे उपदेश सुनना, उनसे अपने कल्याण के लिए कोई मार्ग जानना, उनको हमेशा अपने निकट महसूस करना, गुरु पास्ती, गुरु के निकट रहना तो ठीक है, कौन 24 घंटे रह सकता है, लेकिन उनको तो हम अपने निकट रख सकते हैं अपने मन में। तो गुरु पास्ती, शास्त्र स्वाध्याय, जो कहा गया है हमें हमारे महान लोगों ने, महापुरुषों ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश को, अहिंसा धर्म को हम रोज रोज याद करें, शास्त्र स्वाध्याय। फिर उसके बाद ये तीन चीजें तो लगता है कर लेंगे, लेकिन इसके बाद बहुत कठिन लगती हैं, संयम, तप और त्याग। इतनी बातें, छह बातें हमारे जीवन में छह पीरियड की तरह रोज होनी चाहिए, जैसे बच्चे स्कूल में छह पीरियड पढ़ते हैं, ऐसे सट कर्माणी दिने दिने। ये छह कर्तव्य तो एक मनुष्य होने के नाते मेरे मन में होना ही चाहिए। सुबह उठते ही साथ भगवान की भक्ति, भगवान की पूजन। पूजन के मायने क्या है? पूजन की क्रियाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन पूजा तो सच्ची भगवान के प्रति अनुराग का नाम ही पूजा है। भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनके गुणों का के प्रति अनुराग रख रहे हैं, वो ही हमारी देव पूजा कहलाएगी। अभी मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात कर रहा हूँ ताकि एक फॉर्म हमारे भीतर बन जाए। उन सबको तो फिर अपन पूजा पर ही चर्चा करेंगे तो एक 10 दिन की अलग चर्चा होगी कि पूजा के मायने क्या है। पर पूजा के सीधे अर्थ ये हैं कि हमारा भगवान के गुणों में अनुराग है, सो सुबेरे से उठ करके और भगवान का गुणगान करते हैं, जिससे जैसे बनता है वो अपनी तरह से करे भी, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। जिसको जैसे करना हो, ईश भक्ति है। आपको बताऊं कैसे करती थी विनोबा की माँ, मुझे अच्छा लगता इसलिए मैं उनके उदाहरण सुना देता हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं, ऐसा नहीं मानना कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा कर रहा हूँ, गुणों की प्रशंसा कर रहा हूँ। जब मैंने उनके गीता प्रवचन पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि जो व्यक्ति अभी शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं मानता वो धर्मात्मा ही नहीं है। ऐसा पढ़ करके मुझे लगा कि इस व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त हो गई। किसी धर्म की बपोती नहीं है, ये मैंने आपसे पहले कह दिया था कि दृष्टि की निर्मलता सिर्फ जैनियों की विरासत हो, ऐसा भी नहीं है। दृष्टि की निर्मलता किसी को भी प्राप्त, चांडाल को भी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो सकती है। दृष्टि की निर्मलता हमारे लिए जिसके भीतर है उससे उसे हम सम्मान दें, इसमें कोई हर्जा नहीं है। विनोबा लिखते हैं कि हमारी माँ रोज शाम को घर गृहस्थी के काम से फारिग होकर के और सुबेरे से भी जब उठती थी तब भगवान की पूजा करती थी। सो हम देखते थे क्या पूजा करती थी, हमने कभी उनको ज़्यादा पूजा करते देखा नहीं। वो तो हाथ जोड़ के बैठ जाती थी और कहती थी, भगवान अब सुबह हो गई, अब संसार हमारे सामने है, हमसे बहुत गलतियाँ होंगी, अभी हमने गलतियाँ तो बहुत खाई ही हैं और भी होंगी गलतियाँ, सो तुम उन सबको क्षमा करना, बस इतनी हमारी पूजा है। और कहते कि इतनी बात कोई टेप में रोज बोले तो बोल सकता है, हमें भी लगता था कि माँ रोज दोहराती हैं, लेकिन माँ अकेले दोहराती नहीं थी, जब जब भी इस चीज को बोलती थी तो आंखों से आंसू की धारा बहने लगती थी। भैया कोई अगर रोज इस चीज को बोले और रोज आंसू की धारा बहे तो सहजता है, ये नाटक नहीं है। बोले शुरू में हमें लगता था कि जी क्या है रोज ये कई बात बोल, लेकिन वो एक बात वो अंतरंग से बोलती थी, वो दोहराती अकेले नहीं थी, नहीं तो रोज किसी के बोलने से आंख में आंसू आ जाएं, परिणाम भीग जावे, ऐसा संभव ही नहीं। ऐसी पूजा ऐसी भक्ति ही है जो प्रेम से सनी हुई होती है। अपने जिसको हमने भगवान माना है, जिसके अनंत गुणों को हम खुद पाना चाहते हैं, ऐसे भगवान के प्रति हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करें सुबेरे से और शाम तक, हमेशा हमारे ध्यान में बना रहे। पुराने लोग कितने अभी भी हैं, अभी भी लोग हैं जो अब नमस्ते करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हम, पहले लोग करते थे, उनने कही जय जिनेंद्र जी, जोहार भैया जी, राम राम भैया जी, भगवान का नाम लेंगे। क्यों? तुम्हारे भीतर जो भगवान बैठा है उसको प्रणाम करता हूं, तुम बन सकते हो वैसे बन सकते हो, मेरे भीतर जो बैठा उसे तुम प्रणाम करो। हम एक दूसरे को थोड़ी प्रणाम कर रहे हैं, हम तो जो गुणवत्ता है उसको प्रणाम कर रहे हैं, हमारे भीतर जो शक्ति है भगवत्ता की उसको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा भाव बना रहता था 24 घंटे, इसी को तो कहेंगे देव पूजा। और फिर अपने अपने ढंग हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे, जिनेंद्र भगवान की पूजा का क्या ढंग है उस पर अपन फिर चर्चा करेंगे। पर संक्षेप में तो यही कहूँगा कि भगवान का स्मरण करना, उनका गुणगान करना, ये हमारा एक मनुष्य होने के नाते पहला कर्तव्य है। फिर जो गुरु हैं, जो परिग्रह से रहित हैं, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चिंत तत्पर रहते हैं, ऐसे गुरुजनों को हम अपने निकट महसूस करें, उनकी निकटता हमारे जीवन में हम महसूस करें। देखो भैया, अगर उनकी निकटता हम महसूस करेंगे तो गलत नहीं हो पाएगा हमसे। हमारी अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रही कि जब भी हमसे कोई गलत काम होना होता था उसके पहले ही हमारे मन में भाव आ जाता था कि अरे क्या कर रहे हो, कौन है जो भीतर बैठा लिया है हमने, जो हमें हमेशा गलत काम करने से रोक देता है, वही हमारा गुरु है। हाँ, वो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसको भीतर बिठा लो, ताकि वो हमेशा हमें आगाह कर दे। कोई भी कार्य गलत ना हो जाए, हमारे जीवन को पवित्र बनाने वाला, हमारे कर्म को पवित्र बनाने वाला वही गुरु है, इसलिए उसकी उपासना करना। उपासना के मायने ही उसके निकट बैठना, उप समीप। और फिर शास्त्र स्वाध्याय, जैसा अहिंसा धर्म, जैसा वीतरागता का उपदेश दिया है, उसे बार बार याद करना कि मेरा कर्तव्य तो ये है, मेरे लिए उपदेश ये दिया गया है। दिन भर में चार लाइनें भी पढ़ने की फुर्सत नहीं है, पेपर सवेरे से हाथ में लेके पढ़ने की तो फुर्सत है, लेकिन दो कल्याण के वाक्य पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अपन को निकालना चाहिए, ये अपना कर्तव्य है, मान करके चलिएगा। और फिर संयम, तप और त्याग, जिनसे अपन को बहुत घबराहट होती है, सुनते ही साथ अपन दूर बचते हैं, सो भैया ज्यादा कठिन नहीं है। संयम के मायने क्या है? आत्मनियंत्रण। अरे गाड़ी भी नई लीत हो तो पहले ब्रेक देख लीत के ठीक लगत के नहीं लगत है। अब जब गाड़ी में बैठो और ब्रेक ठीक न हो गए तो बैठो का? करोड़ रुपया की गाड़ी हो और वो कह देवे कि ब्रेक फेल है तो अपन कह दे नहीं बैठ रहे, हुई बहुत महंगी। और अपने जीवन की गाड़ी के ब्रेक फेल हो और उन्हें बैठे रहो तो बैठो और कभी लगे जगह जगह टकराएंगे अपन। और यही हो रहा, आत्मनियंत्रित हो व्यक्ति। गांधी जी कहते थे कि स्वयं के द्वारा लगाए गए अंकुश ऊपर उठाता है और दूसरे के द्वारा लगाए गए अंकुश हमेशा नीचे गिराते हैं। इसलिए अनुशासन कौन सा? आत्मानुशासन। मैं स्वयं अनुशासित हूं, अपने जीवन को मैंने स्वयं अनुशासित कर लिया है। कैसे? खाने पीने, ओढ़ने पहनने, बोलने चालने, सब में मैं अनुशासित रहता हूं। सब में मैं अपनी मर्यादा का ख्याल रखता हूं कि मेरी मर्यादा क्या है, मेरी लिमिटेशंस क्या है। बस इतना ही ध्यान रख लें, ज्यादा कठिन नहीं। एक उदाहरण दें आपको, देखो अपन मान लो एक चार चम्मच शक्कर डाल के पीते हैं दूध में, ठीक है। अब आज मैं अपने ऊपर नियंत्रण करता हूं, आज दो ही चम्मच डालूंगा, ये हो गया नियंत्रण। मैं दिन भर में 10 जोड़ी कपड़े बदलता हूं, ये पहनता हूं, फिर वो उतारता हूं, ये पहनता हूं, अरे मैं तो आज 4 जोड़ी से ज्यादा बदलूंगा ही नहीं, काहे को 10 जोड़ी ले, ये हो गया नियंत्रण। और कुछ भी नहीं, अपनी इच्छाओं पर हमने जरा सा अंकुश रख लिया है। इच्छाएं तो पूरी की हैं, लेकिन उन पर हमने मर्यादित होकर के की हैं। ये हमारा, माने हमको थाली पर 10 चीजें परोस दी आज, तो ये भी हमारे मन की, ये भी मन की, अरे भाई 10 तो नहीं जाऊंगा, एक अलग कर दो, बस 9 से ही काम, ये हो गया मेरा संयम। आप क्या सोच रहे हैं, कोई कठिन है क्या? नहीं, हम आसानी से ऐसा रोज कर सकते हैं। और तब तब तो और कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन ज्यादा कठिन नहीं है। सुबेरे के दूध में 4 चम्मच डाल के पीते थे, सो कल अभ्यास किया था 2 डालने का, आज बिल्कुल नहीं डालेंगे, शाम को डाल लेंगे, अब सुबेरे तो नहीं डालेंगे दूध में शक्कर, बिना शक्कर का। रस परित्याग नाम का तप हो गया, देव अजय तो लिखा उसमें, और क्या रस परित्याग कोई बड़ा भारी कर रहे क्या? इस तरह हम चाहें तो बड़ी आसानी से इच्छाओं को नियंत्रित करने का नाम संयम, और इच्छाओं का निरोध कर देना, उनको जीत लेने का नाम तप है, और कुछ नहीं। इच्छा निरोधा तपा, उस दिन मैंने अपनी इच्छा को जीत ही लिया, मेरे अंदर इच्छा आई तो थी पर नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखेंगे शाम को, देखेंगे अभी सुबह तो नहीं। इस तरह से हम तप भी कर सकते हैं आसानी से, और त्याग, बहुत सी ऐसी चीजें घर में रखी हैं जो कभी काम में नहीं आई, मगर उनको अपन किसी को दे नहीं पाते, किसी के काम आ सकती हैं, इतने ही कर लो भैया हैं, इसमें कठिनाई है क्या? अच्छा जा बताओ, कौ 50 जोड़ी कपड़े रखे हों और हर बार नए नए ले आते हो और पहन लेते हो, कौन एक आध जोड़ी ऐसा होगा कौ साल भर संचियो ने हो इधर हो, एक भी मन ने पहना हो काम ही नहीं आया। नहीं आया काम, जब साल भर से काम नहीं आया, रखा हुआ है व्यर्थ में, मेरे भी उपयोग में नहीं आ रहा, तब किसी को उपयोग का हो तो उसे देने में क्या दिक्कत है, जो उसे देने का नाम ही त्याग है और कुछ नहीं है। मैंने अब उसकी आसक्ति छोड़ दी, दे दिया, ले जाओ। ऐसे जो है त्याग भी आसानी से किया जा सकता। अभी जो है वर्णी जी के त्याग की घटना पढ़ रहा था, सो वही सुनाए देता हूं ताकि मन बन जाए अपन का इन सब चीजों के करने का। जब आपका मन बने तभी शुरू करना ये छहों चीजें, हमारे के कहीं न मानना। हाँ, आपका मन बनाना, हमारी कही में आप कितने परेशान हो रहे, इतने दिन हो गए, सबई कही मान लो तो फिर का है। इसलिए आप तो अपना मन भर बनाना कि अपन को करना है ऐसा, कभी मन आएगा तो अपन करेंगे। वर्णी जी के जीवन की घटना है कि वो एक बार चिरौंजा बाई उनकी धर्म माँ थी, उनके पास ही रहते थे वो, तो बाई जी कह रही थी मंदिर जात में कि कौनो गाड़ी बारो आवे तो लकड़ियां डरवाऊ मैं अपन को। लकड़ियां डलवा आया गाड़ी वाला, दिखा ठहरा लिया, भैया कितने की डालोगे, डाल दी। अब जब लकड़ियां वो डाल रहा था उसी समय चार लोग और आ ही जाते हैं सब लोग ऐसे, तो कहने लगा है कितने की डरवा ली इतने, अरे तुम तो ठग गए, ज्यादा की डरवा ले, तुम तो कटवाओ लोहे से। हाँ, क्यों कटवा के ले हैं। अब वो गाड़ी पूरी डाल चुको तो नीचे, और जी पैसा जब दे हैं, जब तुम काट के धरो भीतरे जब दे हैं। अब बताओ, अब वो पूरी गाड़ी में फिर से लादे और ले जावे, ऐसा तो उसके बस का है नहीं, सब का करे वो बेचारा काटने लगा। अब दूसरे के कहे से वर्णी जी की अंतरंग में ये बात नहीं थी, लेकिन कहने से कई बार आज वर्तमान में भी कई लोग जो है अपने अंतरंग में बड़े निर्मल परिणाम रखते हैं, लेकिन बाहर के वातावरण में संगति में बिगड़ करके और अपने उन परिणामों को एक तरफ धर दे तो जैसी दुनिया चलक वो चाल चलते, और कुछ नहीं है अगर देखा जाए कई लोगों के अंदर। सुबह उनने अपना उदाहरण लिखा उसमें कि मेरे मन में भी, लेकिन देख रहे हैं कि पसीना पसीना हो रहा, वो वृद्ध तो वैसे ही था, सारी लकड़ी कटवा के अंदर रख दी, चुन्नी लगती थी इतनी गाड़ी भर की अठन्नी, सो उसको दे दी। अब दे तो दी, ओ बाई जी वापिस आई, कहा भैया लकड़ी हो, हमने तो डरवा भी ली लकड़ी और उससे कटवा भी दिया, वो पैसा कितने दे, कहते पैसा तो चुन्नी दे। काय भैया बस इतने बहुत है, काय भैया भाई जी इतने ही बोलती थी। तो वर्णी जी को भी दुख तो वैसे हो ही रहा था कि हमने ठीक नहीं किया, और भाई जी ने और इतने ही कह दिया कि काय भैया ऐसो करो, बहुत हो गया इतना तो, पहले कोई अगर इतना कह दे तो बहुत हो गया, कि हमें तुमसे जी अपेक्षा नहीं थी, काय भैया हमारे साथ रह करके और तुमने क्या सीखा, यही सीखा, इतना पर्याप्त था, पहले इतना भीगे परिणाम वाला जीव होता था कि इशारा होते ही साथ, अब की बात अलग है। तो फिर मालूम है घर में और जो कटवाई की चुन्नी और लगने सी, सुबह चुन्नी लई एक अपनी धोती और संगे थोड़ो खावे की मिठाई वगैरह, और भगे अब जा रहे हैं भगते हुए, धूप है पान नंगे पैर भगते चले जा रहे हैं, वो दिख रहा उधर एक आध किलोमीटर दूर चला गया वो गाड़ी वान, सो भगते चले गए, ए भैया रोको, ए भैया रोको, रोका उसने, उसके समझ में नहीं आया कि अब क्या बात हो गई, ये फिर भागते आ रहे, कहते भैया सुनो हमें क्षमा करना। अरे और जी ले लो आप, हमारी बहुत गलती हुई, हमने आपसे जो है इतने कम में लकड़ी डलवा दी, कटवा भी लिया है, और आप हमें क्षमा जरूर कर दें। और जी सामान, उस व्यक्ति ने तो अपने जीवन में ऐसा कभी देखा ही नहीं था, और वो कहते ही रह गया कि सुनो तो भैया, सुनो तो भैया, और उसको दे करके और हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके ये वापस लौट आए। भैया ऐसा त्याग क्या अपने जीवन में है तब अपने कर्म और अब निर्मल हो सकते, अपना जीवन निर्मल हो सकता। गलती तो अपन सब खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस गलती के बाद भी अपने जीवन को सुधारने की अगर अपने भीतर प्रेरणा है, भावना है, अपने कर्म जो हमने हमसे खोटे हो जाते हैं हम उनको संभाल लेवें और ऐसे जो अपने कर्तव्य हैं उनको ठीक ठीक ढंग से पूरा करें तो हमारा जीवन निर्मल होगा। इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक जगन्नाथ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। तब शांत निराकुल मानस तुम पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर मरती वाणी मानो जलती हम बंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे
तक नमो सदा दे तो वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख
जी।
परम पूज्य स्वामी मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में, ओम ने परम पूज्य स्वामी मुंडा श्री भव सागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में अनंत पद प्राप्त है। अर्घ स्वामी स्वाहा नो वर्ण
भैया बूढ़ी आदमी उन्हें पटक दी हो पूरे आदमी से उल्टी हुई मैं कमा कर नहीं
केवल भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य 108 मुंडा श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुंडा श्री भव्य सागर जी महाराज की।